सात सौ चौरानवे नंबर के रजिस्टर में 61 पेज पर 1984 का प्रातः काल
ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद आई तो उनको वो भी याद आएगी क्या जिन्होंने गोद का सुख लिया उनको वो भी याद आएगी जिन्होंने गोद का सुख लिया ही नहीं अगर लिया भी है तो जैसे बाबा बोलते कुछ भी गोद में आए हो तो जिन बच्चों की बुद्धि में रहता था कि हम शिव बाबा की गोद में आए और राजा ही छात्र बात है कितना कितना गोरा कितना शरीर नहीं याद आता था उनकी बुद्धि में कौन समय हुआ होता था शिव बाबा तो उनकी बात अलग लेकिन बहुत वो सुने हुए गिने चुने बच्चे थे जो साकार के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हुए भी उसे निराकार बाप से प्यार करने वाले उनकी बुद्धि में देहधारी ब्रह्मा याद नहीं रहता था जैसे कि मुर्गियों ने भी बताया उसे ब्रह्मा को याद नहीं करना है इनका चित्र भी नहीं रखना है क्योंकि ये विनाशी शरीर है कौन सा विनाशी को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी विनाशी बने अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बुद्धि बनेगी तो ब्रह्मा मुखवंशावली ही जानते और मानते इन बात जो सुखवंशा सुख माना वो जो गोद की वंशावली है वो इन बातों को नहीं माने ब्रह्मा भी जरूर चाहिए जिसको आज देव कहते हैं क्या कहते हैं आज देव इस तरफ मुझे बोलते हैं कि ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया हुआ है दाढ़ी मूछ किससे होती है देवताओं से होती है या मनुष्य से होती है मनुष्य से होती है और दूसरी तरफ कहा है कि ब्रह्मा जरूर चाहिए जिसको आज देव कहते हैं कौन सा ब्रह्मा जरूर चाहिए जिसको आज देव कहते देव है तो जरूर अमर लोक में होना चाहिए कि मृत्यु लोक में होना चाहिए और शिष्य लोक में जिन्होंने शरीर छोड़ा दादा लोक राज में वो मृत्यु लोक में छोड़ा या अमर लोक में छोड़ा मृत्यु लोक में शरीर छोड़ा और बताया भी ब्रह्मा की आयु मृतलोक में पूरी होती तो जरूर इससे साबित होता है कि वो ब्रह्मा जरूर चाहिए जिसको आज देव कहते कहाँ कहते किसने कहा शास्त्र शास्त्र में गए ना तुम आज देव है पुरुष है पुराण तो कौन से के किसके लिए गए आज देव किसके लिए गए किसी स्थिति में कहा गया तुम आज दे जाओ पुरुष पुराण तुम अपने विश्वास जगत निदान शंकर की स्थिति में बोला गया देवताओं में सबसे पहला देवता आदिदेव आज ईश्वर कहते हैं जैनियों में उस नग्न चित्रधारी को और आदिदेव कहते हैं हिंदुओं में आदम कहते हैं मुसलमानों में और एडम कहते हैं अंग्रेजों तो ऐसे शब्दों का अंतर है वही आदिदेव जैसे शिवों से पहले होते हैं वैश्य वैश्यों से पहले क्षत्रिय क्षत्रियों से पहले देवता तो देवताओं में जो आदि कष्ट की आदि करने वाले उसकी आदि किसी ने नहीं की और वो सब की आदि करने वाला तो आदि देव कहते हैं वो ब्रह्मा जी जरूर चाहिए और ब्रह्मा और शंकर एक ही चीज है क्या नहीं शंकर में वो मस्तक में ब्रह्मा प्रवेश किया हुआ दिखाया गया, क्या निशानी? चंद्रमा, जो अर्धचंद्र है वो निशानी दिखाई हुई है अर्धचंद्र की। क्योंकि दादा लेखराज ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी आय 100 वर्ष पूरी नहीं हुई, अधूरी स्टेज में शरीर छोड़ा। कैसे गए अधूरी स्टेज में शरीर छोड़ा? सारे ब्राह्मण तो ये मानते हैं कि ब्रह्मा बाबा गलती हो गए। मुरली ने बोला है कि योगियों का कभी हाथ फेल नहीं हो सकता, उनका हाथ मजबूत होगा या फेल होगा? मजबूत होगा। उन्होंने तो पहली जो बुलेटिन निकाली उसी में सारी बात क्लियर कर दी। बाबा की शरीर छोड़ने की बात उसने छाप दिया कि जब तक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया तब तक उनके हृदय में शरीर, हृदय में थोड़ा दर्द हुआ और शरीर छोड़ दिया। तो हाथ में दर्द होकर के तुरंत शरीर छोड़ देना तो हाथ छोड़ दिया ना, क्योंकि बहुत लंबी आंख होती है और अचानक वो आंख में घात लग जाए तो हाथ से ले जाए। आगे चलकर के जब विनाश होगा, बड़े बड़े आदमियों के हाथ फेल होंगे बहुत तेजी से। कृष्ण जी गए है तो बहेलियों ने पाँव में तीर मारा तो कृष्ण के प्राण पखेरे उड़ गए। पाँव माना बुद्धि रूपी का, प्राण मन कोई बात का ऐसा तीर मार दिया। जिन बच्चों पर बाबा को ज्यादा ही विश्वास था उन्हीं बच्चों ने बाबा के साथ घात कर दिया। बाबा के शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट से स्थापन हुआ। उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में बाबा का और बाबा के चहेतों का नाम नहीं डाला गया और बाबा को 2 दिन के बाद पता चला, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तो बाबा को छूट नहीं लगेगी? जिन बच्चों की बाबा ने मुरलियों ने इतनी महिमा की, इतना शर्माते पर चढ़ाया, उनके द्वारा जब ऐसा काम होगा तो बाबा को छूट लगेगी। लेकिन देखो हद का बाबा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा माना थोड़े से ब्रह्मा कुमार कुमारी थे जिन्होंने उनको अपना बाबा स्वीकार, सारे ऋषि ने तो अपना बाबा स्वीकार नहीं किया। तो हद था उनको खुश लग सकती। जो बेहद का बापू जी है उसको दुनिया की कोई ताकत से खुश नहीं पहुंचा सकती। जिसमें बात की प्रवेशता होती है, बात आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है, प्रवेश करते हैं। इसका मतलब प्रवेश करने से ही पावन नहीं बन जाता है? प्रवेश करने से ही पावन बन जाएगा क्या? प्रवेश तो बाप 108 बच्चों में भी करते हैं। 108 तो समो प्रधान आत्मा है, दुनिया की सबसे जाती तो सर्विस कर सकती है। सर्विस करेंगी, डिस्टर्विस करेंगी, चलो तो डिस्टर्विस ही करेंगी। समो प्रधान आत्मा सर्विस नहीं कर सकती। हाँ, बात ही प्रवेश करके उनके सर्विस व्यक्ति की सोच की वाचा की सर्विस करा सकते हैं तो कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप उनमें 108 में जब प्रवेश करता है सर्विस करने के लिए उसी समय वो पावन बन जाते हैं। बन सकते हैं क्या? सर्विस करने से पावन नहीं बन गए, फिर तो ये पार्सलिटी हो गई, बिना पुरुषार्थ की ये पावन बन गए नहीं। ब्रह्मा दादा लेखराज ने भी प्रवेश किया और उनके साथ फांसी आती रही अंत तक, अंतिम दिन तक। फांसी देना ठीक थी नहीं? बाबा का इसमें कुछ लेना देना नहीं, बाबा का शरीर अपना नहीं है, इसके लिए वो पुरुषार्थ करें। कौन बाबा? किसको बाबा? तो जिसका शरीर है उसी को अपना कर्म बंधन काटना पड़े। तो बाप कहते हैं पावन बनना है, यानी ऐसे नहीं कि मैं प्रवेश कर गया हूँ, उनको प्रवेश करने से पावन बन गई, नहीं, भविष्य में तुमको पुरुषार्थ करके पावन बनना है। सात की कीमत है अपन को आत्मनिश्चय करो। जब तक अंश मात्र भी देवहानि की स्टेज है तब तक पावन नहीं कहते। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया, आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? राजा भी कहाँ बैठता है? सारी राजाई में सबसे श्रेष्ठ राजा माना जाता है, बैठता कहाँ है? उनकी गद्दी पे बैठता है, पूरी सभा लगी हुई होगी। ऐसे नहीं कि राजा की गद्दी नीची और दूसरों की गद्दी ऊंची हो। और कहाँ बैठेगा? जो बड़े बड़े मंत्री महामंत्री है, बड़े बड़े सभासद है, उन सबके बीच में बैठेगा। तो शरीर में भी कर्म इंद्रियां भी है, ज्ञान इंद्रियां भी है, उनसे श्रेष्ठ उन ज्ञान इंद्रियों में भी आंखें हैं सबसे सबसे श्रेष्ठ। उन आंखों के बीच में बापू बैठे, तो स्थूल आंखों की बात है। शक्ति की आंखें कौन है और बाप की आंखें कौन है? रामकृष्ण की आत्माएं ही बाप की आंखें। सुप्रीम सोल बाप की आंखें कौन है? राम और कृष्ण की आंखें। ये आंखें नहीं होती है तो जैसे जहान नहीं होता, आंखें है तो जहान। तो उन दोनों के बीच में, यानी वो रामकृष्ण की आत्मा ही माता पिता का जैसे पार्ट बजाने वाली मुख्य है। किसी यदि के आदि में कोई और माता थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती, लेकिन उस माता ने पालना का काम पूरा किया क्या? काम पूरा नहीं किया तो नाम कैसे पक्का पड़ जाए? नाम किस आधार पर कहा जाता है? काम करे तो नाम ले लो। किसी को वास्तव में वो माता ही आदि माता, लेकिन उस माता का भी कार्य ब्रह्मा ने किया, माना दादा लेखराज की सोल ने किया, कृष्ण की सोल ने किया। इसलिए कृष्ण की सोल ही मृदुल पाठ बजाने वाली माता का विशेष रूप धारण करने वाली हुई। कोई कृष्ण की सोल शरीर छोड़ने के बाद वो आदि माता जो कि दूसरा जन्म लेकर के जब आती है तो उसमें प्रवेश करके असली माता जगदम्बा बन जाती। क्यों? क्योंकि गाड़ी मुख वाले ब्रह्मा की पूजा भारतवर्ष में नहीं होती है, माता जी की पूजा होती है, जगदम्बा की तो पूजा होती है। वंदे मातरम गाया हुआ है, माता के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खोले हैं। ऐसे नहीं गाड़ी मुख वाले के द्वारा स्वर्ग के गेट खोले हैं। तो ब्रह्मा माता नहीं, माना दादा लेखराज की रूप में माता नहीं, लेकिन वही दादा लेखराज की आत्मा कृष्ण की सोल जब कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है तो वो क्या कही जाती है? जगत अम्बा। तो जगत अम्बा और जगत पिता ये दोनों हो गई राम और कृष्ण की सोल। जो बाबा के नूर आंखों की नूर, दोनों उन दोनों आंखों के बीच में क्या होती है? प्रकृति सत्य, उस सत्य में निवास करती है। बाबा ने समझाया आत्मा अविनाशी, इनका सत्य यह विनाशी चलिए। इन्हें कहा जब बाबा कहते थे किसकी तरफ इशारा करते थे? दादा लेखराज की तरफ। इनका सत्य यह विनाशी शरीर है, माना दादा लेखराज का ये सत्य विनाशी शरीर है। इसको अकाल सत्य नहीं कहेंगे, इसको दादा लेखराज के शरीर को अकाल सत्य नहीं कहेंगे। अकाल मूर्त कहा जाता है। अकाल सत्य का कौन से धर्म में गए? सिख धर्म में गए। जरूर है कोई ऐसी आत्मा है पंजाब से कनेक्टेड, पंजाब के खून से कनेक्टेड, जो अकाल तत्व का शरीर बनती है, जिसका सारे अस्त्र तत्व ज्ञान के रखे जाते हैं। शिक्षित लोग बहुत मानते हैं, कहाँ है वो अकाल तक, अमृतसर, किसी वाणी में आया अमृतसर का नाम। अमृतसर क्या हुआ? मानसरोवर ही उसको कहते हैं, ज्ञान मानसरोवर, और दूसरा नाम सिखों ने दिया अमृतसर। तालाब का पानी गंदा होता है तो बड़े बड़े आदमी उसमें हाथ डालते हैं सफाई करने के लिए। तो कौन हुआ है अमृतसर? कौन हुआ? सुप्रीम से परमात्मा। वो गंदा बनता है क्या? वो जिसमें प्रवेश करता है प्रजापिता में, वो प्रजापिता 84 जन्म लेने वाला है तो गंदा भी बनता है। सबसे ज्यादा पति तो सबसे ज्यादा पावन नर से नारायण बनेगा तो ऊंच से ऊंची भी बनेगा और नीच से नीच भी बनेगा। तो वो हुआ अमृतसर और उसकी बाजी में है अकाल तख्त। अकाल तख्त मान हाँ, जिसका वो अकाल मूर्त आधार लेता है। कौन अकाल मूर्त? तो परमात्मा वो आत्मा है तो सबकी ही अकाल मूर्त, वो तो कोई खास बात नहीं। कोई तो ऐसी आत्मा है कीड़े मकोड़े पशुओं की पतंगे मनुष्यों की, जो आत्मा अकाल मूर्त न हो, जिसको पाल खा जाए। आत्मा के तो पाल खाने की बात नहीं है, किसकी है? तो ऐसा शरीरधारी है जो विनाश होता है, चारों तरफ जब काल मंडराता है तो वो और उसके अकाल मूर्त बाप के बच्चे, उनको कोई काल नहीं खाता। उस अकाल मूर्त बाप को कोई काल के गाल में जाते हुए देख ही नहीं सकता। तो वो अकाल मूर्त बाप उस तत्व का आधार लेता है। कौन से तत्व का? कौन से तत्व का आधार लेता है? अकाल मूर्त बाप तो हुआ अमृतसर, और अकाल तत्व कौन सा हुआ? कांच का बना हुआ है। जैसे कांच की नवैया दिखाते हैं, नवैया मन शरीर, ऐसे ही तत्व माना शरीर। तो वो अकाल तत्व कौन हुआ? जगदम्बा, जिसे जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है और परमात्मा शिव भी उसमें प्रवेश करते हैं। यज्ञ के आदमी भी उस माता में प्रवेश किया था। किसने? जो बाप ने। और अंत में दोबारा जन्म लेकर के जो जब प्रत्यक्ष होती है तो भी उसने प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला के जो भी मणके हैं 108, उन सब में उसके सुप्रीम से बाप की भी प्रवेश का होती है। बाप और दादा दोनों प्रवेश करके सब करते। तो इनका ये है विनाशी तत्व, इनका ब्रह्मा का। और ब्रह्मा की सोल से अगर शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करते हैं तो वो बच्ची का जो शरीर है वो हुआ अकाल तक, वो हुआ अविनाशी अकाल तक, जिसको कोई काल खा न सके। नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, एक बाप की बच्ची, हम सब आत्माएं, चाहे वो जगदम्बा हो चाहे वो जगत पिता हो, ये दोनों या और जो भी 108 मणके हैं वो सब किसके बच्चे हैं? एक बाप के बच्चे हैं और सब हम आपस में भाई भाई। तो ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल हो गई। सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? अगर सर्वव्यापी है तो एक व्यापी नहीं कहेंगे, अगर एक व्यापी है तो सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। भले सब बच्चों में प्रवेश करता है लेकिन सर्वव्यापी तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 500 करोड़ में तो नहीं प्रवेश करता। करता फिर भी कितनों में? 108 में। और 108 बच्चे भी ये कह नहीं सकते कि मेरे अंदर किसी की प्रवेशता है। कोई बच्चा नहीं कह सकता, क्योंकि उसके आने जाने का पता पता ही मुरलियन बोला है कि ब्रह्मा को पता चलता है नहीं, इनको भी पता नहीं चलता। तो दूसरा कोई कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर कब सुबह आया कब चला गया? हाँ, ज्ञान के आधार पर एक मुकर्रर थे और एक टेम्परेरी रथ। इसका जिक्र मुरलियों में दिया है कि एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्परेरी रथ। टेम्परेरी माना जो आदि में भी नहीं था और अंत में भी नहीं है, और मुकर्रर माना जो आदि में भी था और अंत में भी रहेगा। तो सर्वव्यापी कहना भूल है। वो सर्वव्यापी नहीं है सुप्रीम से, लेकिन हाँ एक व्यापी। अपने ब्राह्मण की दुनिया में तो कोई नहीं कहता कि परमात्मा सर्वव्यापी, ठीक है सर, कहते नहीं सर, कहते नहीं है मुख से कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन लेकिन फिर ये भी नहीं कहते कि एक व्यापी है। अगर एक व्यापी कहने लगे तो उन्हें साबित करना पड़ेगा वो एक कौन कहाँ है। नाम रूप से न्यारा कर दिया, नाम भी उड़ाई दिया और रूप भी उड़ाई दिया। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हरेक में पांच विकारों की प्रवेशता है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं ये ठीक से बोलते हैं, हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, भाई भाई कहें किस आधार पर, जरूर प्रैक्टिकल में एक बाप होना चाहिए, भले रूहानी स्टेज वाला बाप हो, रूहानी स्टेज वाला बाप होगा तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे, रूहानी स्टेज वाले होंगे। इसका मतलब ये नहीं बिंदु 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 आत्माओं का बाप बिंदु उसका नाम शिव हो गया, नहीं बिंदु तो है लेकिन वो उस स्टेज में रहने वाला है। कौन सी स्टेज, बिंदु की स्टेज, निसंकल्प स्टेज में, उसको कोई चिंता नहीं है। क्या मनुष्यों को तो चिंता होगी और हो, लेकिन सुप्रीम कौन जिस रथ में मुकर्रर रथ में बैठ करके पार्ट बजाएगा उसको एवर लास्टिंग कोई ऐसी चिंता नहीं सता सकती। जो होना हो कल होना हो तो आज हो जाए, होगा ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा से ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई भाई है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया की तूफानों में चले जाते, यहाँ क्या खास बात है और बाहर क्या हो जाता है, है? यहाँ बाप के वाइब्रेशन रहते हैं मधुबन और बाहर और माया के वाइब्रेशन, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। अच्छा क्या मधुबन में माया का राज्य नहीं, मधुबन में माया नहीं आती है क्या, मधुबन में भी आती तो है लेकिन ये बच्चों के ऊपर है कि कौन सी तरफ उन बच्चों की बुद्धि लेती है, माया की तरफदारी लेती है या बाप की तरफदारी। तो सब बच्चे तो एक जैसे नहीं हो सकते, कोई बिरले ऐसे बच्चे हैं जो शहर के सब जगह ये हाल होता है, कोई तो थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जाति समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो, अगर कोई जाति अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं, क्या बाबा की वाणी सुनते समय कोई जाति अटेंशन अगर नहीं देते हैं तो रहे हैं, या सुनते हुए भी जैसे दायरे होकर के सुन रहे हैं, आधा सुनते हैं आधा कान से निकाल देते हैं, तो इससे क्या साबित होता है ये पुराने द्वापर के आदि वाले भक्त नहीं। ऐसे लगता है कि ये द्वापर के आज से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के चले गए, ढेर की ढेर मूर्तियों की पूजा करने लग पड़े, जो विचारी भगत है तो ज्ञान भी कैसा उठाएंगे, विचारी अलर्ट होकर के कान खड़े होकर के एक बाप की बात को सुने तो नहीं। अगर कोई जाति अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं, लेकिन बापों को तो समझने वाले ही समझेंगे, कोई नहीं समझते हैं तो कोई समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबर बार है, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए, ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। उन्होंने बेचारों ने क्या पाप किया, ऐसे क्यों कह दिया, एक तरफ बाबा बड़े आदमी को रिगार्ड भी देने के लिए कहते हैं, कोई बड़ा सन्यासी आ जाता था तो बाबा नीचे उतर के बैठ जाते थे, उसको उसके ऊपर बैठा देते, कोई मिनिस्टर विनिस्टर आता था ओपनिंग करने तो बाबा कहते थे ऐसे थोड़े ही झूठी है, आओ भगत नहीं करनी, थोड़ा चाय भाई खिलानी की चाहिए, इस रिगार्ड तो नहीं करना चाहिए। आखिर इस दुनिया में उसने ये पद पाया है तो तुमसे अच्छे कर्म किए है ना, कभी तो उसने ऊंच पद पाया, तुमने उस समय ऐसे अच्छे कर्म करने की स्थिति नहीं की है तो तुम ऐसे तो नहीं। तो बाबा कहते हैं ये बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझे, क्यों नहीं समझेंगे इतना जल्दी, क्योंकि उनको अपने पद मान मर्तबे का अहंकार रहता है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं समझते। हाँ, दो तीन नियम देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, पाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत कहाँ है। बड़े आदमी भी बाप का परिचय पूरा समझ करके दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन खुद के जीवन में, उस पुरुषार्थी जीवन में चलने की उनको फुर्सत नहीं है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विकल भी ना होंगे, किसको याद करो? बेहद के अद के बाप को नहीं, प्रायश्चित को क्या कहेंगे? अद का फल है, 100 करोड़ शिष्यों से भी ऊपर है तो उनका बाप तो है, तो 100 करोड़ का बाप है यानी 100 करोड़ उसको अपना बाप प्रैक्टिकल में स्वीकार किया, तो 100 करोड़ का बाप, लेकिन वो भी बेहद का बाप नहीं, तो दादा लेख रहा जी बेहद का बाप कहेंगे? नहीं, 5 करोड़ की दुनिया तो उसको अपना बाप अभी तक स्वीकार, और फिर अभी स्वीकार भी करे तो क्या फायदा, वो तो भाई नहीं, जब हो प्रैक्टिकल में मौजूद तो कहें कि वो हमारा बाप। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो भी कम बिना, जैसे तो याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बेहद के बाप में कोई विकर में रह सकता है क्या? नहीं, वो ऐसी स्टेज में रहता है कि कर्म किया हुआ अकर्म हो जाता है। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं की बात करते हो, तब समझते हो अभी अभी माने कभी अभी, जब तक संगम युग है तब तक तुम समझते हो क्या कि डायरेक्ट बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, उन आत्माओं से बात नहीं करते, हम आत्मा में जो सन्मुख बाप के होने वाले उनसे बात करते हैं, सब से बात नहीं करते। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, क्या बात, उनको तीर ज्ञान का तीर अच्छा लगता है, जो डायरेक्ट नहीं सुनते हैं उनको ज्ञान का तीर उतना अच्छा नहीं। इसका मतलब 68 लाइन के बाद जो ज्ञान में आए हैं तो डायरेक्ट नहीं है, तो उनको ज्ञान का तीर नहीं लगेगा। वाणी में तो अभी तो वाणी में तो बोले है कि पुराने पुराने से नए नए सीखे चले जाते हैं, नए नए बच्चों में तो बाप की ज्यादा आस है। अगर तो वाणी में तो क्लियर बोला है कि मैं तो नए नए बच्चों के लिए आता हूँ, पुराने बच्चों के लिए नहीं आता हूँ, ये क्या बात हुई? ये तो दो बातें हो गई, क्या दो बातें हो गई? एक तरफ कहना डायरेक्ट सुनने से चीज अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ जो बात
उनको तो निश्चय उखड़ गया, इनको जिन्होंने हद प्यास ले लिए थे, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना बेहद के बाप को, फिर भी हद के देहधारी को पकड़ करके बैठ गए, जिसे देहधारी के चित्र रखने के लिए भी बाबा ने मुरली में मना कर दिया, तो उनकी हद की बुद्धि, हद की बातों को समझने वाली कल्प की आय को भी लाखों वर्ष समझ बैठती है, उनकी बुद्धि में बैठता नहीं कि अब विनाश होने वाला है, क्योंकि निश्चय तो उभर गए। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है, वो संसरित के अंडरग्राउंड मकान बनाते चले जाते। बाप ने कहा सिर्फ माउंट आबू में मकान बनाने हैं, क्योंकि माउंट आबू से जब विनाश होगा तो तुम बच्चे माउंट आबू से सब कुछ सारा विनाश देखेंगे, यहाँ तपस्या का वायुमंडल है, प्रकृति कंट्रोल में रहेगी, बाकी सारी दुनिया इस विनाश की विभीषिका में खलास हो जाएगी। तो उनकी बुद्धि में बैठता नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, वो क्या समझ बैठते हैं अभी विनाश तो होने वाला नहीं है, अभी तो हजारों वर्ष पड़े हुए, ये शक्ति तो ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए, ये फिर से वही लड़ाई खड़ी हुई है, क्या 5000 वर्ष
ऐसा नहीं, तुम्हारा बाप वो नहीं है, अरे हर रहा है कि बोलेगा है, क्या बोलते हैं हमारा बाप है, तो ऐसे ही फसल से बोलना चाहिए ना, ढीला डाला कैसे बोलेगा। तो अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते, तुम समझते हो अभी मैंने कभी संगम युग में तुम बच्चे समझते हो कि बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं,
उन आत्माओं से बात नहीं करते हैं। किन आत्माओं से? जो सतयुग के सेकंड जन्म में आने वाले, थर्ड जन्म में आने वाले, 83 जन्म लेने वाले, 82 जन्म लेने वाले, या कम जन्म लेने वाले, या दूसरे नारायण से लेकर के 8वें नारायण तक के राज्य में आने वाले, उनसे बात नहीं करते डायरेक्ट। किनसे बात करते हैं? तुम बच्चों से डायरेक्ट बात करते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले और अंत तक पूरा वर्षा लेते हैं बाप से, बीच में छोड़ करके नहीं चले जाते। डायरेक्ट सुनने से चीज अच्छा लगता है, ज्ञान का बाण जिनको अच्छा लगता है जो डायरेक्ट सुनते हैं। इनडायरेक्ट माना क्या? दीदी दादी दादाओं के थ्रू सुना तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट। और बाप के डायरेक्ट थ्रू सुना तो डायरेक्ट। ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्ट हुआ? ब्रह्मा के द्वारा भी डायरेक्ट नहीं, क्योंकि वो भी माँ के थ्रू है। डायरेक्ट कब से है? जिसको सारी दुनिया बाप मानती है उसके द्वारा हमको तो आ जाएगा। तुमको डायरेक्ट सुनने से डायरेक्ट कर सकता है, वो बी के द्वारा सुनते क्या? इसमें पहले भी अंडरलाइन कर दिया, वो बी के द्वारा सुनते हैं। कौन कौन? वो तथाकथित जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। मुस्लिम पूछा, उन ब्राह्मणों से पूछो कि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो क्या जवाब देते हैं? जैसे दुनिया वाले ब्राह्मण जवाब देते हैं वो सूक्ष्म बदन, वैसे ही क्या जवाब देते हैं? वो तो सूक्ष्म बदन है। तो तुम यहाँ हो और तुम्हारा बाप तो सूक्ष्म बदन है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भी जाके सूक्ष्म बदन बैठो। सूक्ष्म बदन समझते हैं ऊपर, ऊपर की बात नहीं है, ये तो दूसरी स्टेज की बात है, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज की बात है जिसमें शरीर भूल जाए, ये देह और देह की दुनिया के पदार्थ और व्यक्ति भूल जाए। तो वो हम बी के द्वारा सुनते हैं। कौन? जो इनडायरेक्ट ब्रह्मा कुमार कुमारी है, डायरेक्ट बाप की बात न सुनने वाले हैं, डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेने वाले हैं, या डायरेक्ट बाप के सम्मुख बैठ करके नहीं सुनते हैं, वो बी के द्वारा सुनते हैं। वो हुए इनडायरेक्ट और तुम हुए डायरेक्ट। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। यहाँ माना कहाँ? मधुबन। अच्छा, ये मधुबन हो गया, वो मधुबन ही नहीं रहा। मधुबन की परिभाषा क्या? मधु माना शहद, मधु की तरह शहद मिठास रखती है, और बन माना जंगल, शहद की वैराग रखती है। अभी अभी बहुत प्यारा और अभी अभी बहुत न्यारा, प्यारापन भी हो और न्यारापन, साथीपन भी हो और साक्षीपन भी हो, तो दोनों बातें जहाँ देखने में आती हो संगठन वो हुआ। और मधुबन में बाप डायरेक्ट आकर के मुझे सुनाते हैं, दौड़ करके दौड़ी पहन के आते हैं परम धाम। क्या? मधुबन में परम धाम से दौड़ी पहन के आते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। किसको? कितने तेल पाप, उनको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। निमंत्रण किसको देना पड़ता है? मनुष्य आत्माओं को निमंत्रण देना पड़ेगा। मनुष्य आत्माएं मान मर्तबा पाने वाली होती है नंबर वन, लेकिन सुप्रीम सोल को कोई मान मर्तबे की दरकार नहीं है। तो वो बी के द्वारा सुनते हैं, यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट सुनते हैं। ये बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो? ब्राह्मण बच्चे बाप का कहना नहीं मानते? तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, कहना नहीं मानते हो तुम नहीं किसी को कह सकेंगे, लेकिन कौन कहता? बाप कह सकते हैं। कहाँ तो बाप नहीं है, कहाँ? यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते बैठे हैं, उसका प्रूफ क्या? यहाँ बाप बैठे हैं माने बातचीत करते हैं तो बैठे, अगर बातचीत न करें तो बैठे का प्रूफ क्या? चैतन्य और जड़ किसे कहा जाता है? चैतन्य माना क्या? चैतन्य माने बोलता चलता। अगर चैतन्य नहीं है तो तो बिंदु कह दे तो वो तो जरूरत हो गया। यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं, बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? ज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ जाता है क्या? ज्ञान काल में भी ऐसे होता है और यहाँ तो ज्ञानी बच्चे हैं, तो बाप की समझानी में और बच्चों की समझानी में कितना फर्क होगा? रात दिन का फर्क होगा। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बाप जो समझाएगा वो बच्चे वो बात इतनी गहराई तक नहीं समझा सकते। जो कहें शुरू हम भी बाप हैं, हम भी समझाते हैं, तब क्या प्रूफ होगा? हैं? तो वो कहेंगे तुम में अहम आ गए नहीं। सब प्रूफ ये है कि बाप का मुकाबला, बाप का सामना ज्ञान में दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जो ज्ञान सागर बाप है उसका मुकाबला नदी नाले नहीं कर सकेंगे, उसके सामना नहीं कर सकेंगे, सामने आने में ही कतराएंगे। तो अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा, भाई भाई समझाएंगे तो एक दूसरे को, लेकिन उनका इतना असर नहीं पड़ेगा कितना, जितना बाप का असर पड़ेगा। कैसे दीदी दादी दादाओं की भी निकलती है कि नहीं निकलती है, लेकिन उनकी कैसे का इतना असर नहीं होगा जितनी बाप की मुरली का कैसे का असर होगा। क्यों? बाप की वाणी में इतना आकर्षण होगा कि दूर से आत्माएं खींची हुई बाप के नजदीक चली आ गई। इसलिए मुरली ने क्या बोला, बच्चे टैप रिकॉर्ड अपने पास रखो। इसलिए ये टैप रिकॉर्ड बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। इसलिए सर्विस करने वाला है, ये एक्यूरेट वाणी ये टैप रिकॉर्ड सुनाएगा। अव्वल नंबर मुरली कौन सी? जो सन्मुख मुख के सामने बैठ करके डायरेक्ट बाप के मुख के सामने बैठ करके सुनी जाती है, वो है अव्वल नंबर। और ज्वाइंट नंबर टैप रिकॉर्ड ये है सेकेंड क्लास। और थर्ड क्लास जो मुरली पढ़ी जाती है, पढ़ करके सुनाई जाती है, वो है थर्ड क्लास। तो हम कौन सी पढ़ते रहे अभी तक? थर्ड क्लास में भी करते रहे। तो थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ेंगे तो बनेंगे क्या? अरे थर्ड क्लास बनेंगे, थर्ड क्लास बनने की पढ़ाई पढ़ते रहे। बाबा ने तो कहा कि आपको तो ट्रेन में भी थर्ड क्लास उड़ा दिया, अच्छे तुम बच्चों को सेकंड क्लास बनना। थर्ड क्लास की बात किया, फर्स्ट क्लास बनो या सेकंड क्लास बनो, थर्ड क्लास हो दुनिया में भी उड़ा दिया तो बाप ने भी उड़ा दिया। फर्स्ट क्लास माला है 108 की और सेकंड क्लास माला है 16108। दो मालाओं में आना है तो आओ, आते हो तो राजयोगी हो, अगर नहीं आते तो फिर प्रजायोगी। प्रजायोग सिखाने के लिए बाप थोड़े ही आया हुआ, काहे के लिए आया हुआ? राजयोग जो राजा कुल के बच्चे होंगे वो किसी मनुष्य के अधीन होना सीखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि राजा ही सिवाय बाप के और कोई सिखाता ही नहीं। सब क्या सिखाते हैं? दुनिया में जितने मनुष्य मात्र है सब क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं, राजा ही सिखाते हैं या गधा ही सिखाते हैं? सब अपने अंडर में करना चाहते हैं, सब अपने अधीन बनाना चाहते हैं। एक बाप ऐसा है जो खुद राजा ही नहीं लेता लेकिन बच्चों को देता। क्या प्रूफ? इसका प्रूफ क्या? इसका प्रूफ क्या? प्रूफ होना चाहिए ना, चित्र प्रूफ है, जो शास्त्रों में चित्र बने हुए हैं, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में जो पुराने चित्र बने उस बात के प्रूफ हैं कि बाप ने जो शंकर बैगर के रूप में जो पार्ट बजाया है उसने विश्व की बात चाहिए। कभी फल बच्चे कहते हैं कि सुनाते, लेकिन उसने कभी ताज धारण किया नहीं है। वो फकीर का फकीर हीरा बच्चों को विश्व की बात चाहिए दी, लेकिन खुद नहीं दी। तो भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। किसने समझाने कितना माना? कितना कितना असर? बाप जितना असर, बाप आपकी वाणी जितनी असरकारक होगी सारी दुनिया को अपने में बांध लेगी, लेकिन मनुष्य की ऐसी वाणी नहीं हो सकती जो 500 करोड़ 600 करोड़ की दुनिया को अपनी बांध सके। अपने पाप फिर भी बड़ा हुआ ना, बड़ा मन, बड़ा माना क्या, सुप्रीम सोल है सबसे ऊंचा, लेकिन वो तो हो गई जरा सारी दुनिया की बात, वो तो ना ऊंच, एक तो साकारी दुनिया में आने के बाद वो ऊंच बनता है और ना नीच बनता है, जो ऊंच बनेगा तो नीच भी बनेगा। हाँ वो आता जरूर है, जो ऊंच से ऊंच बनता है और नीच से नीच बनता है उसमें आता है, लेकिन आकर के जो पाइप बजाता है ऊंच से ऊंच है तो वो किस आधार पर बड़ा कहा जाता है, ज्ञान के आधार पर बड़ा हुआ ये तो ब्राह्मणों की बात है, लेकिन सारी दुनिया ऊंच से ऊंच कैसे मानेगी, सारी दुनिया से इतना ज्ञान नहीं लेगी, कंट्रोलिंग जो बड़ा होगा वो क्या करेगा, विश्व का बाप है ना, जब विश्व का बाप है तो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला, कैसे कंट्रोल करने वाला, जबरदस्ती नहीं, कोई एटम बम फोड़ करके नहीं, उसका वाइब्रेशन ही ऐसा होगा कि जो भी आत्मा स्थान में आएगी उस वाइब्रेशन में आएगी वो चेंज हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के सामने कोई विरोधी रहेगा नहीं, रह नहीं सकता, तो बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, तुमको भी बाप समझाते हैं मुझे अपने बाप को याद करो, तुमको शर्म नहीं आती है इस बात में, है तुमको शर्म नहीं आती है, तो तुम बार बार कहते हो बाबा हम तुमको भूल जाते हैं, है घड़ी घड़ी तुम मुझे भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हैं, है मौसिक बाप के तो बच्चे जो होते हैं वो तो बाप को नहीं भूलते कि हमारा बाप करोड़पति है मल्टी मिलियनायर है उससे हमको ये वर्षा मिलेगा, उसी में रहता है ना समय, वर्षा देने वाला बाप याद रहता है ना, यहाँ क्यों भूल जाते हो, है हाँ माया तो भुलाई देती, माया की कसरत करते थे तो तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, अरे प्रीति भी कब होगी, जब पहचान होगी, जब असली पहचान ही नहीं है तो भूल होगी, अगर पूरी पहचान हो जाए तो भूल नहीं हो सकती, पहचान में कौन कौन सी बातें आती, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य बातें तो सारी वही है बेसिक नॉलेज की, लेकिन अंतर कर दिया समझ में, बाप का नाम क्या है रूप क्या है धाम क्या है गुण क्या है कर्तव्य क्या है ये सब बातें मालूम होनी चाहिए ना, कन्या होती है कन्या की सगाई हो जाती है उसको प्रीति कब दिखती है, वो तो दिखाया जाता है, नाम बताया जाता है, कुल बताया जाता है, काम बताया जाता है, धाम बताया जाता है, तो याद बुद्धि में थक जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी बच्चे बार बार क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि एक तो पहचान नहीं है और जिनको पहचान हुई भी है नंबर वार को साथ उनका मैं जो हूँ जैसा हूँ और जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूँ, पाठ कहाँ बजाएगा उसको बदलने के परम धाम पाठ को साकार करने के लिए साकार सृष्टि पर ही बजेगा ना, तो मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूँ उसको उसी रूप में कोई बिरले बच्चे हैं जो याद करते हैं, तो नंबर वार हुए ना, पहचानने वाले भी तो नंबर वार पुरुष हुए ना, जानने वाले कि सब जनता पार्टी एक जैसी हो गई है, जनता पार्टी सब एक जैसी हो गई क्या, नंबर वार हुए ना, तो नंबर वार की जो स्टेज है उनमें कोई 100% भी होगा जानने वाला, किसको पाप के स्वरूप को जानने वाला, तो जो होगा उसको तो जरूर याद रहता होगा, जिसको क्या याद रहता होगा, बाप, बाप की याद के बगैर उसका काम नहीं चल सकता, क्या काम है उसका, काम ये विश्व की बात का ही लेना, किसका काम है, शंकर के लिए गायन है योगवल से विश्व की बात का ही ली, विश्व की बात का ही, जोनल इंचार्ज नहीं सिर्फ, ये इंडिया का इंचार्ज नहीं, या दुनिया के जो सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी आश्रम उनका इंचार्ज नहीं, लेकिन विश्व की बात सही, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं नतमस्तक हो जाएं, उसको अपना बाप एडम या आदम स्वीकार कर ले, तो तुमको शर्म नहीं आती है, तो मुझे गड़गड़ी है, गड़गड़ी भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसको पूरी पहचान नहीं, दूसरी पहचान भी अगर हो जाए तो संबंध पूरा नहीं जोड़ पाते। संबंध कहाँ तक जोड़ने की बात बताई? एक संबंध नहीं, सर्व संबंध एक के साथ। और संबंध भी जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा बिंदी बाप ही बाप है, वो बिंदी हमारा टीचर है, वो बिंदी हमारा गुरु है, वो बिंदी हमारा साजन है। बिंदी के साथ साजन का संबंध, बाप का संबंध, भाई का संबंध, बंदू का संबंध, ये कैसे? मुरली में तो बोला है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु, और तुम बिंदु बिंदु आप अपना आत्मा आप अपने भाई भाई, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। कि बनता है? नहीं बनता। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब शरीर में प्रवेश करते हैं तभी तो संबंध बनते हैं। दूसरे साकार संबंध तभी बनते हैं जब शरीर हो पाप सुप्रीम सोल के। तो सुप्रीम सोल बाप जब शरीर में प्रवेश करते हैं, माना ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा में जब प्रवेश करते हैं तो दूसरे संबंध भी बनते, हम आपस में भाई बहन बनते, आपस में भाई बहन। और जो हमारा बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। मुरली ने तो बोला है ना, सतगुरु निराकार कहते हैं तो सतगुरु अकाल मूर्त हुआ ना। सतगुरु अकाल मूर्त है तो उसकी मूर्त होनी चाहिए कि नहीं? उसको कोई काल नहीं खा सकता, ऐसी मूर्त वाला होना चाहिए। तो अकाल मूर्त जिसको कोई काल खा न सके ऐसी मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति माने मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति नहीं। तो सदगुरु मिला दलाल, दलाल के रूप में जब मिला तो मूर्ति तो हुई ना। तो वो मूर्ति वाला उसको तुम घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? कारण क्या हुआ? क्योंकि पूरा संबंध एक के साथ जोड़ा, कोई संबंध जोड़ा है और कोई संबंध नहीं जोड़ा। और जो जोड़ा भी है उसमें भी विचार पैदा हो जाता। अगर एकमात्र भी विचार पैदा हुआ तो बाप फिर याद याद, एक बाप के अलावा तुमने कोई दूसरे को बाप बना लिया जीवन में, थोड़ी नहीं याद आएगा। उस साजन के अलावा कोई दूसरा साजन बना लिया, चलो ये भी सही वो भी सही, तो वो अपने आप हट जाएगा। शर्त क्या है? माम एकम याद, सिर्फ मुझे एक को याद कर। अगर दूजो में याद आया तो उसकी याद जरूर कटपुट हो जाएगी। बाप डायरेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्ट बाप डायरेक्ट ये बातें कहते हैं तो जरूर असर जल्दी पड़ता है, जल्दी असर सब पड़े। जब बाप डायरेक्ट कहे, 59 से ये वाणियां चलती चली आ रही है, अव्यक्त वाणियां, धारणा की वाणियां है ना, धारणा की वाणियां है ना। लेकिन धारणा बढ़ रही है ब्राह्मण परिवार में या घट रही है? तुम तो नौजवान है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। हाँ बताओ, 59 के बाद सारे ब्राह्मण परिवार की कुल टोटल धारणाएं घट रही हैं या बढ़ रही है? जल्दी बताओ, ना करो या हाँ करो। प्योरिटी की धारणाएं, प्योरिटी का सबसे अव्वल पुरुष है यूनिटी। और यूनिटी ये नहीं कि संख्या दिखाई पड़े, यूनिटी माने जैसे 5 पांडवों की यूनिटी थी, मुट्ठी बंध जाती है, एक के आधार पर बंधे हुए हैं, ऐसे बंध हुए जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको तोड़ सके। आदमी भी कहते थे ओम मंडली गई की गई, और बाबा ने अखबार में क्या दिलवाया? ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड किस आधार पर? ओम मंडली माना क्या? माना ब्रह्मा, ओ माना विष्णु, मा माना महेश, इन तीन की मंडली थी। जैसे संगीतकारों की मंडली होती है, कोई तबला बजाता है, कोई सारंगी बजाता है, कोई गीत गाता है, तो छोटी सी मंडली हुई ना। तो ये भी मंडली, यज्ञ के आदि में उपक्रम करने वालों ने ऐसा उपक्रम किया कि इनमें फ्रिक्शन पड़ जाए। तो बाप आते हैं तो अकेले नहीं आते, किसके साथ आते हैं? त्रिमूर्ति के साथ आते हैं। आदि में भी वो त्रिमूर्ति थी, और अंत में भी वो त्रिमूर्ति रहती है। दुनिया उसको अलग करना चाहे तथा कथित ब्राह्मण उसको अलग करना चाहे तो ब्रह्मा पार्टी अलग और शंकर पार्टी अलग विष्णु पार्टी अलग वो पार्टीबाजी करेंगे, लेकिन वो तीनों बाप के बच्चे पहलौती के बच्चे वो कभी भी अलग हो नहीं सकते। दुनिया अलग करेगी वो फिर एक हो जाएंगे। तो ये मंडली है ओम मंडली जो आज में भी थी और जब एडवांस पार्टी शुरू हुई दिल्ली में तो भी थी और अंत तक थी। जैसे यदि के आज में ओम मंडली बिखेरा हुआ तो दुनिया वाले कहने लगे टूट गई गया ज्यादा लेकर। ऐसे ही एडवांस पार्टी जब दिल्ली में शुरू हुई तो तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या कहना शुरू कर दिया शंकर पार्टी गई शंकर गया। लेकिन नहीं, इनकी तीनों की ऐसी प्रगति है जो दुनिया को बनाने और बिगाड़ने वाली तत्व प्रधान दुनिया बनाने वाली और तामसी दुनिया को नष्ट करने वाली है। तो बाप जब डायरेक्ट ये सब बातें समझाते तो बच्चों के ऊपर असर जल्दी पड़ता है। माना ब्रह्मा बाबा की टोल ने गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करके इतनी वाणियां चलाई इतने साल, लेकिन उन वाणियों का कोई असर सुनने वालों के ऊपर नहीं पड़ा और ही नीचे गिरता चला गया सारा ब्राह्मण परिवार। माना ब्रह्मा की मुरली कही जाएगी या शिव बाबा की मुरली कही जाएगी, मुरली किसकी? शिव बाबा की मुरली कही जाएगी, ब्रह्मा बाबा की मुरली नहीं कही जाएगी। वो अव्यक्त वाणी है लेकिन उसको मुरली नहीं कह सकते। मुरली के लिए क्या गए नहीं, क्यों नहीं कह सकते? मुरली तेरी में जादू, यानी ब्रह्मा बाबा की वाणी में या दुनिया के कोई भी बड़े बड़े महापुरुष हो बड़े बड़े धर्म पिताएं हो उनकी वाणी में जादू नहीं है। कौन सा जादू? विश्व परिवर्तन, सारे विश्व को परिवर्तन कर दे ऐसा जादू और किसी की वाणी में नहीं हो सकता। बाप की समझानी ही ऐसी जो सारी दुनिया को परिवर्तित कर देती है। मनुष्यों की वाणी चाहे कितना भी महान से महान मनुष्य हुआ हो लेकिन रिजल्ट क्या लेकर निकला? दुनिया और ही गड्ढे मिले। एक परमात्मा बाप ही ऐसा है कि वो जब बाप के रूप में पार्ट बजाता है, वर्षा देने वाले बाप के रूप में पार्ट बजाता है, क्या रोपण करने वाला भी बाप होता है लेकिन वो तो गुप्त होता है। रोते हुए कोई बच्चा बाप को देखता है क्या? वो तो गुप्त ही रहता है, वो आज की बात अलग। लेकिन जब बाप वर्षा देने वाला होता है तो वर्षा देने वाला बाप संसार के सामने और पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष जरूर होता है। तो डायरेक्ट बाप का असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? देह का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनू तो इसकी जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। क्या था? कहते हैं कब? डायरेक्ट, जब डायरेक्ट पाप के रूप में पार्ट बजा करके सामने कहता है तो असर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अभी तक यज्ञ में कितने वर्ष हो गए? 58 साल हो गए। 58 साल के बाद भी अभी तक भी असर नहीं पड़ रहा। कोई छाती छो के नहीं कह सकता कि हम निर्विकारी बन गए, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। अब पढ़ाई 50 साल की बताई और राजधानी स्थापन होने के लिए 60 साल बताई। दुनिया में भी जो धर्म पिताएं होते हैं धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं तो 50-60 साल के अंदर ही अपना सारा कार्य पूरा करके गए। तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल उन बापों का भी बाप क्या उनसे ज्यादा लेजी है क्या? वो धर्म स्थापन करके नहीं जाएगा क्या? राजा ही स्थापन करके नहीं जाएगा क्या? वो तो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट बाप जब बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है तो उसका असर पड़ता है और बच्चे विकारी से निर्विकारी बनते हैं। बाप का असर जल्दी पड़ता है। बाप कहते हैं मेरा कहना नहीं मानते हो? ये जन्म निर्विकारी बनोगे तो तुम 21 जन्म निर्विकारी बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनो, ये बात नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर सड़ा लगता है। बाप जब बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के कहता है तो बच्चों को तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना, इस बात में फर्क रहता है बच्चों के तीर में और बाप के तीर। ब्रह्मा भी क्या है, बोली में आता है ना, ब्रह्मा का बाप कौन, जरूर हो तो ब्रह्मा को भी तो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने वाला कोई और था ना, वो खुद तो नहीं जान सके उन साक्षात्कारों का रहस्य, अगर जानते होते तो गुरु से क्यों पूछते, बनारस में जाने की क्या दरकार थी। तो बताया सुप्रीम सोल बाप ने कोई ने प्रवेश करके वो प्रैक्टिकल पार्ट बाप का बजाया ज्ञान का बीज बोने का, तो बाप की समझानी और बच्चे की समझानी फर्क रहता है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, ये भी बताए देते कल कह दिया किसी नए से क्या कहते हैं, अब नए नए बच्चों से मिलने आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि सदैव नए नए बच्चों से ही मिलते रहेंगे, उल्टे उल्टे प्रश्न करते बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि ये है बिल्कुल नहीं बात। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है, क्या ऐसे क्यों कहा नए नए बच्चों से हमेशा मिलते रहेंगे, ये बात नहीं है कि नए नए उनसे भी मिलते रहेंगे, कहना क्या होता है तथाकथित तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, वहाँ तो आजकल के नए नए निकले हुए हैं, बाकी पुराने समय के तो कोई भी नहीं है उधर, जिन्होंने बाबा की गोद ली हो गोद का रस लिया हो तो सब नए नए आए हुए, चाहे बूढ़े हो वहाँ हो चाहे नए हो, लेकिन सब नए नए बच्चे हैं। तो ऐसे नहीं कि बाप सदैव नए नए से ही मिलते रहेंगे, नहीं पुराने भी आएंगे और वो भी आकर के बाप से अपना वर्षा लेंगे। बुद्धि में नहीं बैठता है क्योंकि बिल्कुल नई बात है, गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया, उसकी बुद्धि में नहीं बैठता, नया नया की बुद्धि तो यहाँ बैठ रहा है, जो पुराने पुराने हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, ये बोला बुद्धि में नहीं बैठता है क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया इसलिए नहीं बैठता है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया किसने, दुनिया वालों, अच्छा दुनिया वालों की बात है, और ब्राह्मणों की दुनिया की कोई बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने कृष्ण का नाम नहीं डाला है, गीता का भगवान कौन, वो किसे समझते हैं तथाकथित ब्राह्मण, गीता का भगवान का रूप किसे मान लिया, दादा लेखराज ब्रह्मा को मान लिया, क्या दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की कौन नहीं है, ब्रह्मा कहो कृष्ण कहो बात तो एक ही है, उस कृष्ण की सोल को उन्होंने परमात्मा बाप का प्रैक्टिकल रूप नहीं मान लिया है, उसके अलावा कोई और रूप मानते हैं भगवान का, नहीं तो ये गलती कहां से हुई, ये बड़ी से बड़ी भूल, गीता का भगवान बाप को निकाल दिया और बच्चे को रख दिया, यज्ञ के अंदर ब्राह्मण की दुनिया में ही ये भूल हो गई, वो यज्ञ के आदि में जो पिता था माता पिता थे उनका नाम निशान गुम कर दिया और कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया, माने ब्रह्मा का नाम डाल दिया, बाबा ने मना किया कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना, ये विनाशी स्वरूप है इसको याद भी नहीं करना है, तुमको याद उसको करना है जो अविनाशी है और तुमको अविनाशी वर्षा देने वाला है। तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, हमारी गीता कौन सी है, हमारी गीता तो हुई वास्तव में कागज के पत्ते की,